ओम शांति। थके तो नहीं बैठे बैठे, नहीं तो खड़े हो जाएं, थोड़ा हो जाओ खड़े, थोड़े से खड़े हो जाओ। आज हम एक आपके क्वेश्चंस पे तो मैंने एक नजर डाल ली है, मैं आपको जनरल चीजें कुछ बता देता हूँ जिससे जीवन समस्याओं से मुक्त रहे, स्पिरिचुअल पावर कैसे इसमें मदद करती है। बैठ जाएं अभी। बहुत बड़ी चीज ये होती रही है पिछले समय में कि मनुष्य का मन बहुत वीक होता गया डे बाय डे। समझते हैं आप इस बात को? प्रेशर ज्यादा, ब्रेन की शक्ति कम, इसलिए टेंशन बढ़ा, नेगेटिविटी बढ़ी। तो वही बात जो छोटी थी बड़ी लगने लगती है। जैसे बाहर ठंडी हवा चल रही है, जो बॉडीली स्ट्रांग हैं वो एंजॉय करेंगे और जो थोड़े वीक हैं, नाक बह गई, ठंडी लग रही है, होगा नहीं। तो एक ही सिचुएशन के अलग अलग अनुभव। हमें स्पिरिचुअली अपने को बहुत पावरफुल बनाना है, यानी मन की शक्ति को बढ़ाना। स्पिरिचुअलिटी को कुछ सीरियसली आप न लेंगे, मन की शक्ति को बढ़ाना, मन को पॉजिटिव करना, बुद्धि को स्वच्छ करना, जो उसमें बहुत गंदगी भर ली है, अपनी बुद्धि के लेवल को ऊंचा उठाना, इसको ही स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। स्पिरिट से बना स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म आत्मा से बना है। तो आत्मा के स्वरूप में हम रहकर सोल कॉन्शियस होके जो शक्तियां प्राप्त करते हैं, जो शांति हमें मिलती है, उसको स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। हमें इसको बढ़ाना है। पिछले 50 साल में जैसे मेटेरियलिज्म बढ़ी, कंप्यूटर तो था ही नहीं भारत में, आईटी को तो कोई जानता ही नहीं था क्या होती है आईटी, सब कुछ बढ़ गया। पिछले 40 साल में युग बदल गया, और पिछले 10 साल में और युग बदल गया, और अगले 10 साल में कुछ और होगा। इसलिए हमें अपने मन को पावरफुल करना है, समस्याओं को समस्या न मान के चैलेंज मान लेना है, उन्हें पार करने का रास्ता निकाल लेना है। इम्पोर्टेंट बात, जो परिवार के संबंध में समस्याएं लिखी हैं, अपने को बदलना। आप जरा ऑब्जर्व करें अपने को, सारे संसार को देखें, बुद्धिमान लोगों के बीच में भी एक सुंदर चीज मिस हो रही है, और वो है, आप सब अपने को देखेंगे अब, मैं कहां गलती कर रहा हूं, कर रही हूं, इसका एहसास अधिकतर लोगों को नहीं है। उंगली दूसरों की ओर है, पति पत्नी का झगड़ा है पति पत्नी की ओर, पत्नी पति की ओर। तुम बदलो तो सब कुछ अच्छा हो जाए, मैं बदलूं तो अच्छा हो जाए। जब मनुष्य ये सोचना शुरू कर देता है तो अनेक समस्याएं नष्ट हो जाती हैं। बहन जी प्रश्न तो पूछेंगी, मैं सार में कुछ चीजें कह देना चाहता हूँ। स्पिरिचुअलिटी का, राजयोग का एक सुंदर सा सिद्धांत आपको लेकर चलना है जीवन में। हम लेकर चले हैं उसे, मन की स्थिति अच्छी होगी तो परिस्थितियां स्वतः ही बदल जाएंगी। आपके ऑफिसों में कुछ गड़बड़ है, बॉस की ओर से कुछ भी होता है, आपके साथियों की ओर से कुछ भी होता है, उसमें आप परेशान नहीं होंगे। अपने वाइब्रेशन अच्छे रखेंगे, अपने एटीट्यूड अच्छे रखेंगे, और राजयोग से हमारे इनर टैलेंट्स बहुत बढ़ जाते हैं, आपकी क्षमताएं बढ़ जाएंगी, आपकी योग्यताएं बढ़ जाएंगी, और आप बहुत लाइट रहने लगोगे। देखो दादी एक बात कहती रहती है, क्योंकि वो उनका जीवन था, तो वो उनके सबकॉन्शियस माइंड में भरा हुआ है। जितना लाइट रहेंगे, लाइट माना हल्के, इजी गोइंग नेचर होगी, उतने ही परमात्मा से माइट मिलेगी और एवरीथिंग विल बी राइट। कितना अच्छी बात है। तो हमें ये सब करना है, बहुत हल्के होना है। इसी में मैं एक चीज और जोर देना चाहता हूँ, एक फॉर्मूला आप याद रखेंगे, ए बी सी डी फॉर्मूला। ए फॉर एक्सेप्टेंस, कुछ चीजों को एक्सेप्ट करके ही चलना पड़ेगा, पड़ेगा या नहीं। एक केस ऐसा आया मेरे पास आज, एक बड़ा डॉक्टर समस्या लेकर आया, मेरी लड़की एमडी कर लिया है, अच्छे डॉक्टर है, वो शादी करना चाहती है किसी दूसरे डॉक्टर से जो एमबीबीएस है, जो शराब बहुत पीता है, जो नॉन वेज खाता है, ये खाती नहीं, ये इन चीजों से नफरत करती है, दोनों की कैसे बनेगी। अभी मैरिज नहीं हुई, मैरिज से पहले ही समस्याएं शुरू हो गई हैं। मैंने उन्हें कहा थोड़ा सा सोच समझ के कदम उठाना, लव मेक्स ए मैन ब्लाइंड, ये बहुत हो रहा है आज कलयुगों में। फिर समस्याओं से घिर जाते हैं, किसी से प्यार करते हैं वो चलता नहीं, डिप्रेशन में आते हैं, बिना मतलब की समस्याएं बढ़ा लेते हैं। हमें अपने को बदलना है, ए फॉर एक्सेप्टेंस, ए फॉर अवॉइड, कुछ चीजों को अवॉइड करके चलना है, बी बाईपास से निकल जाना है कुछ चीजों को। अब आप जा रहे हैं, रास्ते में दो की टक्कर हो गई, गाड़ियों की थोड़ा सा डैमेज हुआ है, चोट वोट नहीं लगी, वो लड़ रहे हैं, आप खड़े होके तमाशा तो नहीं देखेंगे ना, आपको जाना है भाई, आपका टाइम है, बाईपास से निकल जाओ। सी और कैंसिल, कुछ चीजों को सदा के लिए कैंसिल रख दो जीवन से, मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये नहीं खाना है, ये अपना डिसिप्लिन होना ही चाहिए जीवन में। डी डू, जो कुछ डू करना करना है, डूइंग है, उसे डिटर्मिनेशन के साथ करें, विद फुल डिटर्मिनेशन, फुल डेडिकेशन, तो सफलता हो जाएगी। ऐसे छोटे छोटे नियम अपने जीवन में साथ लेकर चलेंगे तो हम ऐसे जी सकेंगे कि जीवन में समस्याएं ना हो। कई लोग इस तरह जीते हैं कि हर कदम पे समस्याएं पैदा कर लेते हैं। मैं उदाहरण दे सकता हूं, हमारे पास ऊपर के अंसर में एक युवक सेवा के लिए आया, वो जो होम्योपैथी डॉक्टर है उसका ड्रॉर खोल रहा था, उसमें कुछ देख रहा था, वहां वाले ने पूछ लिया क्या कर रहे हो भाई, उससे लड़ाई शुरू कर दी, तुम कौन होते हो मुझे कहने वाले, और तुमको बड़ा अहंकार है, यहाँ रहते हो तो क्या है। एक नर्स बहन थी, उसको कह दिया खाते खाते मोटी हो गई है, खा पी के उसको निकाल दिया गया वहां से, चार जगह से निकाल दिया गया, दो मास में कोई पसंद नहीं करता। समस्या मनुष्य क्रिएट कर रहा है। अगर हम ये कला सीख लें कि हमें कैसे जीना है, व्यवहार कैसे करना है, जीवन के को डिसिप्लिन बना लें और ये सीख लें, ये समझ जाएं कि किस किस तरह से समस्याएं क्रिएट हो रही हैं, तो हम बच सकते हैं, बहुत चीजों में हम सेफ रहेंगे और जीवन प्रगति की ओर आगे बढ़ेगा।
ओम शांति। भाई साहब, पहले तो मुझे एक जिम्मेवारी दी है जिसे मैं पूरा करना चाहती हूँ, और वैसे हम सभी भाई साहब से बहुत अच्छी तरह परिचित हैं, फिर भी भाई साहब को हम पिछले 50 वर्षों से माउंट आबू हेडक्वार्टर्स में समर्पित रूप से सेवाएं देते हुए देख रहे हैं, और आप एक महान योगी हैं। आपके जीवन में जो हमने सीखा है, आपसे जो अनुभव किया है, आप ज्ञान को बहुत सुंदर रूप से चिंतन करते हैं, और चिंतन करके उसको प्रैक्टिकल में प्रयोग करते हैं, और इसीलिए जो टीवी में एक बहुत ही प्रसिद्ध पीस ऑफ माइंड में टॉक शो आता है समाधान, कि हर समस्या का एक समाधान है, तो भाई साहब बहुत ही सिंपल बात में, बहुत छोटी छोटी बातों से हमारी बड़ी बड़ी समस्याएं समाधान कर देते हैं। तो पहले हम एक बार वेलकम कर लें भाई साहब का। वैसे दादी जी वेलकम कर चुकी हैं और बहुत सारे प्रश्न आए हैं भाई साहब, लेकिन हम समय को देखते हुए उन प्रश्नों में से जो एक जैसे हैं उनको पूछ लेते हैं। वर्क से रिलेटेड एक प्रश्न है कि हम अपने ऑफिस में कार्यस्थल में प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाएं और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में राजयोग मेडिटेशन हमको मदद कर सकता है, क्योंकि आईटी में नॉर्मली कुछ टास्क दिया जाता है, एक टीम वर्क होता है, एक टीम लीडर होते हैं और उनको वो पूरा ही डेवलप करना होता है नॉर्मली, तो कैसे हम अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं जो टाइम से उसे कर सकें।
सारे ही कार्यों में कोई भी काम हो, दो चीजों का पहले महत्व है, मन और बुद्धि। कोई भी कार्य करते हुए यदि मन भटक रहा है, एकाग्र नहीं है, तो कार्यों में देर भी लगेगी और कुछ का कुछ होगा, गड़बड़ भी बहुत होंगी। टाइप करना है एनडी कर देंगे, ईएनडी समाप्त कर दिया। दूसरा, हर कार्य के लिए मनुष्य की बुद्धि परम आवश्यक है ना, कौन कितना बुद्धिमान है, किसके पास परखने की निर्णय करने की शक्ति कितनी अच्छी है, उस पे कार्यों की प्रोग्रेस या सफलता निर्भर करती है। राजयोग से ये दोनों बढ़ जाती हैं, मन की शक्तियां भी, मन की एकाग्रता भी, तनाव से मुक्ति भी, और बुद्धि बहुत एफिशिएंट, बहुत रिफाइंड बनने लगती है, तो कार्य बहुत सहज हो जाता है। मेरे अनुभव तो ये हैं जो मैंने कराए भी हैं लोगों से और खुद भी किए, एक घंटे का काम आधे घंटे में हंसते खेलते पूरा हो जाएगा। तो राजयोग बहुत अच्छी कला सिखाता है संगठन को यूनाइट करने की। अगर आपकी टीम में तीन ही लोग हैं तो आप तीन भी एक होकर कार्य कर सकते हैं। राजयोग ये हमें सिखा देता है, क्योंकि इससे हमारे अंदर सद्गुण आ जाते हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट करने की भावना आ जाती है, और जो ईर्ष्या होती है जिसके कारण बड़ी बाधाएं पड़ती हैं कार्यों में, वो समाप्त होती है, एक दूसरे के प्रति सम्मान हो जाता है, इससे हमारी संगठित शक्ति बहुत अच्छी हो जाती है और सब कुछ बढ़ जाता है।
जी भाई साहब, आप राजयोग की बात कर रहे हैं तो राजयोग से मेडिटेशन से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है जिसमें बहुत सारी बातें पूछी गई हैं। तो एक पार्टिसिपेंट पूछते हैं कि मुझे मेडिटेशन करना बहुत बोरिंग लगता है, मैं उसे कैसे इंटरेस्टिंग बनाऊं, कैसे एक्साइटिंग बनाऊं और मेडिटेशन के टाइम को कैसे बढ़ाऊं, और साथ साथ ये भी जानना चाहते हैं कि मेडिटेशन करने से क्या हम अपनी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं, क्या हमारे अंदर जो चिंताएं हैं, भय हैं, उनसे छुटकारा पा सकते हैं, क्या हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट कर सकते हैं और क्या हमारी थिंकिंग प्रोसेस को क्लियर कर सकते हैं।
बहुत सारी बातें एक ही प्रश्न में हैं। राजयोग बहुतों को बोरिंग लगता है, क्योंकि इसमें एकाग्रता का महत्व है और मनुष्य का मन बहुत ज्यादा भटक रहा है, लेकिन अगर 10-10 मिनट प्रैक्टिस की जाए, लंबा समय नहीं, केवल 10-10 मिनट चार बार सवेरे से लेकर रात तक, और जब आप अपने कार्यों में हैं तो एक एक मिनट, आप ऐसा नियम बना सकते हैं कि हर घंटे के बाद एक मिनट मुझे मेडिटेशन करना, एक बात। दूसरा, राजयोग को इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग बनाने के लिए कई हमारे पास विधियां हैं। जिसने प्रश्न पूछा है, निश्चित रूप से वो ज्ञान योग करते हैं, तो मेरे पास तो 25 अभ्यासों की लिस्ट है, अभी तो उसका टाइम नहीं है। आप छोटे अच्छे अच्छे अभ्यास सीख लें तो उनको चलते फिरते करें, काम करते हुए करें, तो योग एक इंटरेस्टिंग एंटरटेनिंग सब्जेक्ट बन जाएगा और इसमें बोरियत नहीं होगी, क्योंकि इससे मन पावरफुल हो जाता है। मन पावरफुल होने से तन की बीमारियों पर विजय पाना सरल हो जाता है। मेरा अपना अनुभव है, बहुत समय का, बहुत सालों का अनुभव है, कि मुझे बीमारियां तो आई शरीर में, लेकिन किसी बीमारी ने पेन नहीं दिया, कभी पीड़ा नहीं। मेरा हाथ भी कट गया तो मुझे पीड़ा नहीं होती, खून बह रहा है, पट्टी लग गई, पीड़ा नहीं। ये मेरे वंडरफुल अनुभव रहे हैं जीवन के। और इससे क्योंकि हम अपने परमपिता से जुड़ जाते हैं, जो सुप्रीम सर्जन भी है, उसकी हमें बहुत मदद मिलने लगती है। जहां तक बात रही चिंताओं की और टेंशन की, बहुत सारे भाई बहने तो यहाँ नए बैठे हैं, जब हमारा कनेक्शन सुप्रीम फादर से हो जाता है, जब हमें ये फीलिंग हो जाती है वो हमारा है। अब सोचो आप यहाँ बहुत सारे बाप और माँ बैठे हैं, आप अपने बच्चों की कितनी केयर करते हैं, नहीं चाहते आप आपके बच्चों को जरा भी कष्ट हो जाए, वो भी हमारा माता पिता है। अगर हमें ये डीप रियलाइजेशन हो जाए, अगर उससे हमारा ये नाता जुड़ जाए, तो वो भी हमारी वैसी केयर करेगा, उससे भी ज्यादा। और अनेक मन के बोझ, अनेक मन की चिंताएं, टेंशन वो दूर कर लेता है। आप चाहें तो इसके एक्सपेरिमेंट करके देख लें, रात को सोने से पहले अपने सुप्रीम फादर के नाम एक छोटा सा लेटर लिख दो, 5-7 लाइन का, उसे खुदा दोस्त मान लो, लेटर टू माय सुप्रीम फ्रेंड लिख दो, और जो भी मन पर आज बोझ हो, जो भी चीज मन पर प्रेशर डाल रही हो, आज सारे दिन में कुछ बुरा भला हो गया हो, कुछ अच्छा नहीं, कुछ ऐसा वैसा जो एक्सपेक्टेशंस के विरुद्ध, वो उसके नाम लेटर लिख दो और उसको लास्ट में लिख दो कि ये तुम ले जाओ फ्रेंडली, और देखो क्या होता है। आपको समझ में आ जाएगा, अनुभव हो जाएगा, आज का बोझ आज रात को ही सोने से पहले समाप्त हो गया, कल नया दिन, फ्रेश दिन, नई एनर्जी, नया कार्य, चिंताएं और तनाव इससे दूर हो जाते हैं। राजयोग का और अच्छा अभ्यास करेंगे, उससे अपना नाता जोड़ेंगे।
भाई साहब, एक बहुत सुंदर क्वेश्चन आया है कि बीके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को हम अपने चारों ओर देख रहे हैं, एंड व्हाट आई फील दैट हाउ देयर फेस ग्लो, और क्या हम भी अपने चेहरे पर ऐसी सुंदर चमक ला सकते हैं।
देखिए, ये ग्लो है, नो डाउट, हम भी जानते हैं, हम भी शीशे में जब अपना मुंह देखते हैं, कभी ग्लो कम होता है, कभी ज्यादा होता है। जब हमारा मेडिटेशन बहुत पावरफुल होता है, जब हमने रोज सवेरे परमात्म मिलन का सुखद अनुभव किया होता है, तो हमें ही अपना चेहरा चमकता हुआ नजर आता है, उस पर पाउडर क्रीम लगाने की जरूरत महसूस नहीं होती। और कुछ लोगों को ये अनुभव होता है, जब थोड़ा बहुत भी काम ज्यादा हो, थक गए हो, योग में मन न लगा हो, मन भटक गया हो, तो चेहरा दूसरा है। ये ग्लो प्योरिटी का है। इन सभी ने पवित्रता को अपना जीवन बना लिया है। जैसी बहन जी बैठी हैं हमारे यहाँ, बहुत सारी साड़ी पहने बहने आप देख रहे हैं, इन्होंने अपना लाइफ डेडिकेट कर दिया है भगवान को। तो चिंता, कमाने खाने का फिक्र, काम करना है, आईटी में 12 घंटे का काम है, ओह थक जाते हैं, रात को आएंगे, बुरा हाल हो जाएगा, इस सबसे मुक्त हो गए हैं। सेवा हम लोग भी ज्यादा करते हैं, शायद मैं तो 14 घंटा करता हूँ, लेकिन हम उसको एंजॉय करते हैं बहुत, क्योंकि उसके पीछे कोई सेल्फिश मोटिवेशन नहीं है। सेल्फलेस हैं, दूसरों को मदद करनी है, किसी को ज्ञान देना है, सेवा भाव से यहाँ सब लोग कार्य कर रहे हैं। तो निश्चिंत जीवन है, श्रेष्ठ ज्ञान मिल गया है, खोज समाप्त हो गई है, परमात्मा से नाता जुड़ गया, उसकी शक्तियां मिलने लगी, प्योरिटी आ गई, ये ग्लो उसका है। और जीवन में अगर कुछ छोटी मोटी बातें, जैसे बीमारी आती है, हमें भी आती है, कामकाज चलता है बहुत ज्यादा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है उसमें भी, लेकिन उसको हल करने की विधि आ गई है। अभी जैसे मैं रेस्पॉन्सिबल हूँ किचन का, अभी यहाँ भी कितनों का भोजन बन रहा है, 10,000 का यहाँ बन रहा है, ऊपर 1,500 का बन रहा है, डॉक्टर्स आए हुए, बहुत सीनियर डॉक्टर्स 1,000, आज मैं उनका ही क्लास करा के आ रहा हूँ पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पे। तो एक विधि मिल गई है, जीवन जीने का ज्ञान मिल गया है, किन चीजों को अपना कर चले, खुशी क्यों नष्ट होती है, खुश कैसे रहेंगे, कार्यों को सुचारू रूप से कैसे मैनेज करें। हमारे यहाँ तो बहुत बड़ा संगठन है ना, शांतिवन में जहाँ बैठे हैं 700 लोग तो ऐसे हैं जो डेडिकेटेड हैं, और 500 और रहते हैं हमेशा ही जो सेवा करते हैं। तो ऐसे बड़े संगठन में हम सब रहते हैं जहाँ हमें भी लोग देखते हैं, हम जरा सी गलती कर दें वो नोट करेंगे, हमें केयरफुल भी रहना होता है और उन्हें बहुत कुछ सिखाना भी होता है, इसलिए हमारा लाइफ सुंदर है। मतलब ये सेल्फ एप्रिसिएशन नहीं, पर हमें लगता है हमारा लाइफ बहुत सुंदर है।
ये सच है भाई साहब, हमारा पूरा जितना भी भोजन बनता है, हमारे 3 कैंपस है, एक कैंपस आपने यहाँ देखा, ऊपर 2 कैंपस है, पांडव भवन और ज्ञान सरोवर। और भाई साहब जो हम इतना सुंदर भोजन खा रहे हैं, तो भोजन की जो टीम है वो पूरी टीम को आप संभालते हैं, उस पूरे कार्य को संभालते हैं, तो भाई साहब को एक बार हम सब थैंक्स करेंगे।
क्या तो भोलेनाथ का है, मालिक वही है, हम तो नीचे वाले हैं।
इतनी जिम्मेवारी संभालते हुए और इतना अच्छा अनुभव भी करें और सेवाएं करें, ये सच्चा योगी ही कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है भाई साहब, जिसमें पूछा गया है कि जो बीकेस हैं वो कहते हैं कि भगवान हमें पढ़ाता है, तो हम कैसे इस पर विश्वास करें?
पढ़ के देख लो, सुनने से ही थोड़ा ही विश्वास होगा। भाई तुम भी पढ़ लो, आपको कहा जाए फलाना कॉलेज बहुत अच्छा है, वहाँ के बच्चे फर्स्ट क्लास ले रहे हैं, टॉप कर रहे हैं, आप भी चाहेंगे ना मेरे बच्चे वहीं पहुंच जाएं? ये सच है कि ये ज्ञान भगवान ने स्वयं दिया है, इसलिए मैंने आपको एक बात कही, हमें कुछ भी खोजने की जरूरत नहीं पड़ी। जितने भी सीक्रेट्स हैं सृष्टि के, आत्मा के, परमात्मा के, वो सब मालूम हो गए हैं, उसका भी ग्लो है हमारे पास। इसलिए भगवान ने सरल शब्दों में ये ज्ञान दिया हुआ है, आप यदि उसको एंजॉय करना चाहते हैं, वो सचमुच बहुत बड़ा एंजॉयमेंट है, केवल ज्ञान नहीं है, तो आप कर सकते हैं।
कुछ ऑफिस से संबंधित बात है या समाज या परिवार में, कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास में अच्छी क्वालिटीज हैं, तो आज की दुनिया में उसे ज्यादा प्रॉब्लम्स को क्यों फेस करना पड़ता है और उसके साथ में ज्यादा मिसडीड्स क्यों होती हैं?
बहुत सुंदर क्वेश्चन, लेकिन बहुत गहरा, उत्तर भी ऐसा ही है। देखिए, एक समय था ये संसार सतयुग था, जानते हैं ना, सतयुग में देवी देवताओं का समय था, यानी सुप्रीम बीइंग का, जो सुपर ह्यूमन बीइंग है उनका समय था, और अब है कलयुग, ये है पाप का युग, इसलिए यहाँ पाप का साम्राज्य है। यहाँ खराब लोगों के लिए रास्ता साफ है, अच्छे लोगों के लिए कांटे ही कांटे हैं, क्योंकि ये कलयुग है, इसे हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। ये अच्छे लोगों का समय नहीं है। लोग गायों की बात करते हैं ना, गाय छोड़ दी जाती हैं, किचरा खा रही हैं, क्योंकि गायों का जो युग था वो खत्म हो गया, अब उनका समय नहीं है। इसलिए इस समय से मिलन करने के लिए हमें थोड़ा अपनी अथॉरिटी से, कुछ चीजों से मिल मिला के बुद्धिमानी पूर्वक अपना मार्ग खुद चुनना पड़ता है। अगर आप सोच लें, एक ऑफिसर है, मैं आपको उदाहरण दूं, इंजीनियरिंग में एक ऑफिसर है, उसके ऊपर चीफ इंजीनियर है, उसके ऊपर सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर है, वो बीच में है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। अब वो ईमानदार है, वो कहता है मैं कोई पैसा नहीं लूंगा, उसके साथ क्या होगा? उसको बहुत परेशान होना पड़ेगा, तो उसको मिलकर चलना पड़ता है, करना पड़ता है कुछ। इसलिए अच्छे लोगों को यहाँ ज्यादा सफर करना पड़ता है, क्योंकि अच्छे लोगों का अच्छा समय आने वाला है, लेकिन इस अच्छाई के साथ बुराइयों को फेस करने की ताकत भी होनी चाहिए। अच्छाई तो हमारे पास भी बहुत है, लेकिन उस अच्छाइयों के साथ हमने ऑलमाइटी की पावर भी ले ली है, तो जो दुनियावी चीजें हमें चैलेंज जाते हैं, फेस करने पड़ते हैं, उनकी पावर हमारे पास रहती है। लोग क्या करते हैं, मैं केवल ईमानदार हूँ, भाई मैं तो सच्चाई पे चलूंगा, कुछ भी हो जाए मुझे तो सच बोलना है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि सत्यता के साथ सत्यता की शक्ति भी चाहिए, सत्यता के साथ सभ्यता भी चाहिए, सत्यता के साथ ये भी कहा गया है सत्य बोलो लेकिन प्रिय बोलो, सत्य बोलो लेकिन जो उचित समय देखकर बोलो, सत्य बोलो लेकिन सुंदर शब्दों में बोलो, ये भी तो कहा गया। लेकिन मुझे तो सच बोलना, सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड, तुम मरो या जियो, तुम फांसी पे चढ़ो, मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मुझे तो सच बोलना ही है, झूठ बोलना मेरी आदत नहीं है। तो ये एक गुण तो हो गया, लेकिन इसके साथ चार पांच अवगुण आ गए, इसलिए उससे ज्यादा फेस करना पड़ता है, ये बैलेंस लाना पड़ेगा।
बहुत सुंदर आपने दो बातें बताई, एक तो युग ऐसा है और दूसरा एक क्वालिटी है लेकिन उसके आसपास बहुत सारी नेगेटिविटीज हैं जिसके कारण से हमें फेस करना पड़ता है। भाई साहब, कोई पूछ रहे हैं कि आजकल दुनिया में बाह्य सुंदरता पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, और जब भी कोई हमें देखता है और देखता है कि मैं इतना सुंदर नहीं हूँ, आई लुक अगली और मुझे कमेंट करते हैं, तो मैं फिर आखिर मुझे रोना आता है, मैं इस बात को कैसे ठीक करूं। और मुख्य बात ये जानना चाहते हैं कि दूसरे हमारे बारे में जो कहते हैं उससे हम प्रभावित ना हो, वो कैसे हो सकता है।
पहले प्रश्न में इसका उत्तर आया था, अपने चेहरे पर स्पिरिचुअल ग्लो ले आओ तो ये बाह्य रूप दिखाई नहीं देगा, चमकती हुई आत्मा ही दिखाई देगी। अभी जिसको जैसा शरीर मिल गया, चेहरा मिल गया, उसको तो काट फांट के ठीक नहीं कर सकते ना, या कर सकते हैं? प्लास्टिक सर्जरी होती तो, पर इतनी ज्यादा तो नहीं। स्वीकार कर लो और वहीं से अपने जीवन को इतना ऊंचा उठा दो कि तुम्हें देखने के लिए लोग तरसने लगे। क्या आपने नहीं देखे कुछ विकलांग लोग जो बड़े बड़े काम करने लगे? एक व्यक्ति अभी मुझे बताया, उसका फोटो भी दिखाया, जिसको हाथ में ये हो गया, खराब हो जाते हैं ना यहाँ वाई जिसे कहते हैं अर्थराइटिस, तो उंगली काम नहीं करती। अब वो इंजीनियर बन गया, ऐसे कंप्यूटर पे काम करने लगा, हाथ ऐसे थे ना, उसने हार्ड नहीं मानी, ऐसे ही टाइपिंग करने लगा, सारे काम करने लगा। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि जीवन में ना तो निराश होना है, और ये बॉडी कॉन्शियसनेस है, जब आप स्पिरिचुअल मार्ग पे आएंगे तो सोल कॉन्शियसनेस बढ़ेगी और ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हट जाएगी, नष्ट हो जाएगी। जीवन में आगे बढ़ना है तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं और क्या सोचते हैं, मैं अपने को इतना ऊंचा उठा दूं, इतना टैलेंटेड कर दूं, महान बना दूं कि मेरे बारे में सभी लोग ऊंचा सोचने लगे, अच्छा सोचने लगे। तो स्पिरिचुअलिटी इसमें बहुत मदद करेगी। स्पिरिचुअलिटी में एक बहुत अच्छा अभ्यास है सेल्फ रेस्पेक्ट का, स्वमान हिंदी में कहते हैं, ये बहुत सुंदर अभ्यास है। जब हम स्वमान में स्थित हो जाते हैं, जैसे मैं भगवान का बच्चा महान आत्मा हूँ, मैं सर्वशक्तिवान की संतान बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं पवित्रता के सागर की संतान परम पवित्र हूँ, जब हम इसके फीलिंग में रहने लगते हैं तो और ये छोटी बातों का प्रभाव हम पर नहीं पड़ता। ये बहुत ही पावरफुल बात है, क्योंकि हर चीज मनुष्य के ब्रेन को अफेक्ट करती है, लेकिन यदि आप स्वमान का अभ्यास करते हैं तो आपके वाइब्रेशंस उनको जाएंगे, उनकी बातों के इफेक्ट के वाइब्रेशंस आपको टच नहीं करेंगे।
जी, ऐसा भी कहा गया है, इट्स नॉट योर ब्यूटी, इट्स नॉट योर फेशियल ब्यूटी विच मेक्स यू ब्यूटीफुल, बट इट्स योर स्माइल एंड योर वर्क विच मेक्स यू ब्यूटीफुल। सो भाई साहब, एक और बात जानना चाहते हैं, गीता में लिखा है कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा नहीं मिलता, तो फिर योग करने से, मेडिटेशन करने से हमें ज्यादा प्राप्ति कैसे हो सकती है?
समय से पहले नहीं मिल रहा है, समय पर आप योग कर रहे हैं तभी मिल रहा है, समय से पहले तो कुछ है ही नहीं। आज से पहले आप क्यों नहीं आ गए यहाँ? समय पर ही आए और अभी जो कुछ करेंगे वो प्राप्त होगा। भाग्य क्या है? कर्म और फल, इसका साइकिल बना लो। कर्म फल, फिर कर्म फल, फिर कर्म फल, फिर कर्म, इसको भाग्य कहते हैं। तो भाग्य और कुछ नहीं, कहीं लिखा हुआ नहीं है, कहीं फिक्स डिपॉजिट नहीं है, वो हम खुद उसके निर्माता हैं। जो हम करेंगे महान कार्य, पावरफुल कार्य, उसका जो हमें फल मिलेगा उसे भाग कहते हैं। लोग इसको इस तरह यूज करते हैं कि पिछले जन्मों में भी हमने कुछ अच्छा या बुरा किया हुआ है, उसका फल हमें इस समय मिल जाता है। कभी बुरा मिल जाता है, लोग कहते हैं हम इतना अच्छा काम कर रहे, फल पता नहीं बुरा क्यों मिल रहा, हमारा भाग्य शायद खराब है। तो ये भाग्य नहीं, पूर्व जन्म का ही कोई कर्म इस समय इफेक्ट करने लगा है, उसे हम भाग्य कह देते हैं।
जी बहुत थैंक्स। एक और प्रश्न है भाई साहब कि हम अपनी कंसंट्रेशन पावर, मन की बुद्धि की कंसंट्रेशन पावर को कैसे बढ़ाएं, हमें कोई एक्टिविटी सिखाइए।
बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, इस पे तो कई घंटे हम लोग बोलते हैं, अलग अलग इसकी विधियां हैं, लेकिन मैं आपको छोटी सी बात सिखा देता हूँ। एक्टिविटी पूछिए, सवेरे उठकर जब भी आप उठते हो, आप लोगों में से कईयों को देर तक काम करना पड़ता है, 6 बजे उठेंगे, लेकिन 6 बजे तक अवश्य उठ जाना चाहिए। जब भी आप उठें तो आप शुरू करें, 21 बार लिखें, मैं सर्वशक्तिवान की संतान बहुत शक्तिशाली हूँ। इससे आपके ब्रेन को एनर्जी जाने लगेगी और जो निगेटिविटी का फ्लो है लंबे काल का वो डिलीट होने लगेगा। और भी कई प्रैक्टिस ध्यान देनी है, दूसरों को देखने की आदत, दूसरों के बारे में सोचने की आदत, ईर्ष्या द्वेष और रिवेंजफुल एटीट्यूड रखना, ज्यादा निगेटिव सोचना, इनसे मन भटकता है। अगर आप कुछ भी एक्टिविटी करते रहें और ये भी करते रहें तो कंसंट्रेशन में सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए सवेरे ये लिखेंगे और थोड़ा सा प्रैक्टिस करें बीच बीच में। दूसरी एक्टिविटी, मैं आत्मा हूँ यहाँ, आई एम पीसफुल, आई एम पावरफुल, आई एम प्योर, ये 3 संकल्प ले लिया करें। आप 1 घंटे में 1 मिनट कर लें, आपकी थकान भी दूर हो जाएगी, पुनः कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, कार्य बहुत अच्छा चलेगा। ये 2 प्रैक्टिस आप कर सकते हैं।
बहुत सुंदर प्रैक्टिस है, हम समझते हैं आपने नोट की होगी। पहली है कि मैं सर्वशक्तिवान की संतान बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ, जो हम सुबह सुबह अभ्यास करें और हर घंटे में अभ्यास करें, आई एम पीसफुल, प्योर एंड पावरफुल सोल। भाई साहब, एक प्रश्न परिवार से संबंधित है कि हर माता पिता बच्चों के लिए बहुत मेहनत करते हैं और बहुत उन्हें सहयोग करते हैं, त्याग करते हैं, फिर भी बच्चे यदि अच्छा परफॉर्म नहीं करते, आशा के अनुकूल कार्य नहीं करते हैं तो हम अपसेट हो जाते हैं, हमें क्रोध आता है, इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करें?
इसी के लिए ज्ञान की जरूरत होती है। जो आपके बच्चे हैं, बच्चे तो हैं लेकिन वे आत्माएं भी हैं और वो अपना कर्मों का अकाउंट साथ लेकर आपके घर में जन्मे हैं। हर एक के पास अपनी बुद्धि है, अपने संस्कार हैं, अपना मन है, इसलिए सभी एक से नहीं हो सकते। जैसे एक क्लास में सभी टॉप क्लास नहीं हो सकते, सभी फर्स्ट क्लास नहीं हो सकते, वैरायटी क्लासेज होंगे ना। तो कुछ चीजों को हमें स्वीकार करना है। माँ बाप की एक्सपेक्टेशंस तो हाई रहेंगी और रहनी भी चाहिए, लेकिन उनका अपना भी तो कुछ है ना, उनकी अपनी हॉबीज हैं, इंटरेस्ट हैं, उनके अपने संस्कार हैं। कोई तो मोबाइल पे लगे हुए सारा दिन, व्हाट्सएप पे लगे हुए हैं, आप भेजेंगे जाओ स्कूल में पढ़ने, वो पीछे बैठ के काम कर रहे हैं अपना। तो ये सब हो रहा है, इसलिए उन्हें अच्छे वाइब्रेशंस दें आप। मैं एक बहुत अच्छी विधि आपको बता रहा हूँ जिसका प्रयोग मैंने बहुत परिवारों में कराया है। बैठकर अपने पूरे परिवार को देखो एक मिनट और संकल्प करो, हमारे परिवार में ये बहुत अच्छी आत्माएं हैं, ये सब भगवान के बच्चे हैं, महान आत्माएं हैं। अब से स्पिरिचुअल वाइब्रेशन सबको जाएंगे, उनके विचारों में चेंज आएगी, वो कलयुग के इफेक्ट से थोड़ा थोड़ा मुक्त होने लगेंगे। जब आप अपने बच्चों को कुछ कहते हैं, माँ बाप की आदत होती है आदेश देना, आदेश का समय नहीं है, प्यार दो, मोटिवेट करो, तुम बहुत अच्छे हो, अरे तुम तो बहुत बुद्धिमान हो, ऐसे ही बोलो, थोड़ी सी मेहनत करो, देखो 90 से अब मार्क्स आ जाएंगे, ऐसे मोटिवेट करो उन्हें, तो आपस में प्यार और सम्मान बढ़ेगा और उनके टैलेंट्स में उन्नति होगी और आपको भी अच्छा रहेगा, क्रोध करने की गुंजाइश कम होगी। और अपने को थोड़ा ध्यान भी रखना है कि हम क्रोध करेंगे तो हमारे नेगेटिव वाइब्रेशंस बच्चों को जाकर और डाउन करेंगे। बस अब समाप्त करेंगे भाई,
लास्ट क्वेश्चन।
हाँ, भूख लगी होगी ना सबको, मैं तो खा आया हूँ, मुझे ऊपर जाना अभी।
एक लास्टिक बात है कि हम जहाँ भी कार्य करते हैं या घर में समाज में रहते हैं, हम कोई अच्छा कार्य करने के लिए या परिवर्तन के लिए कोई निर्णय लेते हैं कि हम आज से ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन हमारे आसपास के लोग हमारे ऐसे अच्छे डिसीजंस को ना जाने कैसे चेंज कर देते हैं, ना जाने कैसे हमें मैनिपुलेट कर देते हैं, तो हम कैसे उनसे बचें और उनसे हमारे संबंधों को भी अच्छा रखें।
रोज सवेरे उठकर, मैंने कहा आप 6 बजे तक जब भी उठें, पहले 10 मिनट अपने को दे दें, क्योंकि उस टाइम सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है और जैसे वाइब्रेशंस आप अपने घर में या घर के बाहर क्रिएट करना चाहते हो कर दें। और ये संकल्प अवश्य करेंगे, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, बहुत शक्तिशाली हूँ, और ये सब लोग हैं जो गड़बड़ कर रहे हैं, दे आर माई गुड फ्रेंड्स, वो बहुत अच्छे हैं, दे आर माई गुड फ्रेंड, दे आर वेरी कोऑपरेटिव टू मी, ये संकल्प 5-5 बार कर देना। सबकॉन्शियस माइंड में बहुत पावर है, सवेरे अगर 10 मिनट आप इस तरह यूज करना सीख जाएं, अपने को भी चार्ज करना, दूसरों के लिए भी अच्छी भावनाएं पैदा करना, तो आप देखेंगे सब आपके सहयोगी बन जाएंगे। एक सुंदर अनुभव युक्त बात आपके सामने लास्ट, आप रोज उसी टाइम उन सब आत्माओं को मन से थैंक्स दिया करो जिन्होंने पिछले हजारों साल में आपको हेल्प की है। संकल्प करो, पिछले हजारों सालों में जिन्होंने मुझे मदद की है, कोऑपरेट किया है, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद, तो आपको हेल्प करने वालों की लाइन लग जाएगी, विरोधी खत्म होते जाएंगे, फ्रेंड्स की संख्या बढ़ती जाएगी। रोज सवेरे ये करना। ओम शांति।
बहुत बहुत थैंक्स। हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि जो भी प्रैक्टिकल टिप्स भाई साहब बता रहे हैं, ये प्रैक्टिकली अनेकों ने, लाखों ने किया है और हम सब इसके रिजल्ट्स अनुभव कर रहे हैं, इसलिए इन्हें आप अवश्य ही करें, आज से ही शुरू करें।